डाइनिंग हॉल की हलचल धीरे धीरे सिमटकर बड़े हॉल की खामोशी में बदल गई थी। वहीं ऊंची छत, वहीं पुरानी दीवारों पर टंगे चित्र और बीच में रखी भारी लकड़ी की कुर्सी, जहां रत्ना देवी आकर बैठ गई थीं। सुबह की धूप अब खिड़की से सरककर फर्श पर लंबी पट्टी बना चुकी थी। बाकी सब भी वहीं आ गए थे, नाश्ते के बाद का वो छोटा सा विराम, जब कोई पूरी तरह खाली भी नहीं होता और पूरी तरह व्यस्त भी नहीं। आर्यन के हाथ में वही लिफाफा था। उसने सावधानी से किनारा खोला, कागज़ बाहर निकाला। कागज़ खुलते ही उसकी आंखें पंक्तियों पर दौड़ी, पहले सामान्य, फिर हल्की सी हैरानी और फिर एक सीधी सी सूचना जैसा भाव। दादी, उसने ऊपर देखा, आवाज़ बिल्कुल सपाट थी, आपकी बहन यहाँ आ रही हैं अगले हफ्ते। हॉल में एक पल को हवा ठहर गई। रत्ना देवी की उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर कस गईं। चेहरे पर अजीब सा मिश्रण उभरा, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सामने आ जाए। आंखों में हल्की चमक आई, पर उसी के साथ भौहों के बीच एक महीन रेखा भी खिंच गई, खुशी और उसके ठीक पीछे छिपी एक हल्की घबराहट। सच, उनके होठों से बस इतना निकला। आवाज़ में अपनापन भी था और तैयारी का बोझ भी। अदिति, जो अब तक फ़ोन पर कुछ स्क्रॉल कर रही थी, तुरंत उठकर पास आ गई। क्या हुआ दादी, आप खुश नहीं हैं क्या? आपकी बहन आ रही हैं, ये तो अच्छी बात है ना? उसके सवाल में सीधी मासूम जिज्ञासा थी, लेकिन जवाब आने से पहले ही शकुंतला ने बीच में बात पकड़ ली। अदिति, तुम नहीं जानती, उसने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा, वो बहुत सख्त है, हर चीज़ उन्हें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, ज़रा सी गलती भी पसंद नहीं, और ऊपर से बहुत धार्मिक, नियम कायदे समय सब कुछ नाप तौल कर। अदिति के चेहरे पर एक क्षण को मुस्कान फीकी पड़ी। ओह, उसने धीरे से कहा, जैसे उसने अपने मन में किसी सख्त अध्यापिका की तस्वीर बना ली हो। रत्ना देवी चुप थीं, उनकी आंखें अब चिट्ठी पर नहीं, सामने दीवार पर टिक गई थीं, पर देख कहीं और रही थीं, जैसे उन पंक्तियों के पीछे के साल खुल रहे हों। बहन का चेहरा, पुराना आंगन, साथ की हंसी, और वही बहन जो हर बात में अनुशासन की रेखा खींच देती थी। तभी विश्वनाथ ने आगे बढ़कर उनकी कुर्सी के पास खड़े होते हुए कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, खुश रहिए, मासी आ रही हैं, अच्छी बात है, हम सब मिलकर उनका ध्यान रखेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। उसकी आवाज़ स्थिर थी, न ज़्यादा भावुक न हल्की, बस भरोसा। रत्ना देवी ने उसकी तरफ देखा, एक पल को उनकी आंखों की कठोरता नरम हुई, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो। उन्होंने छोटा सा सिर हिलाया, तैयारी करनी होगी। हो जाएगी, विश्वनाथ ने कहा और अपनी घड़ी पर नज़र डाली, मुझे निकलना होगा, देर हो रही है। उसने हल्के से झुककर रत्ना देवी के कंधे को छुआ, एक आदर भरा इशारा, और फिर तेज़ कदमों से बाहर की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही हॉल में जूतों की आहट कुछ क्षण गूंजी, फिर मुख्य दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। आर्यन ने चिट्ठी मोड़कर टेबल पर रख दी। मुझे भी निकलना है, उसने कहा। अदिति तुरंत बोली, मैं भी, कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। दोनों साथ साथ बाहर की ओर बढ़े। चलते हुए अदिति कुछ कह रही थी, हल्की सी हंसी के साथ, और आर्यन बीच बीच में छोटा सा जवाब दे रहा था। उनकी आवाज़ें गलियारे में खोती चली गईं। उधर विशाल ने अपना बैग उठाया, वो भी निकल गया। रम्या ने जल्दी जल्दी जूते ठीक किए, बाल संवारे और सब बाहर निकल गए। रम्या की चहचहाहट कुछ पल तक सुनाई देती रही, फिर हवेली के बड़े दरवाजे ने उन्हें भी अपने बाहर छोड़ दिया। शकुंतला ने इधर उधर देखा, जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो। मुझे भी ज़रा बाजार तक जाना है, कुछ सामान लेना है, उसने कहा, आवाज़ में हल्की जल्दबाजी थी। बिना किसी और बात के वो भी पल्लू संभालती हुई बाहर चली गई। हॉल धीरे धीरे खाली होने लगा। अब बस दीवारों पर टिके चित्र, ऊंची खिड़कियों से आती धूप और बीच की कुर्सी पर बैठी रत्ना देवी। नौकर अपने अपने काम में लग गए। मधु फर्श पर पोछा लगाने लगी। रामू बाहर के आंगन में बाल्टी भर पानी ले जा रहा था। दूर रसोई से बर्तनों की टकराहट की आवाज़ आ रही थी। दिन की सामान्य लय शुरू हो चुकी थी, पर रत्ना देवी के चेहरे पर वो सामान्यता नहीं थी। उनकी आंखें अब भी सामने थीं, पर मन कहीं और। होठों की रेखा सीधी थी, लेकिन उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर हल्के हल्के थिरक रही थीं, अनजाने में, जैसे भीतर कोई गणना चल रही हो, कमरे, व्यवस्था, नियम और वो अदृश्य दबाव के सब कुछ ठीक होना चाहिए। हॉल के एक कोने में खिड़की के पास श्यामली खड़ी थी। वो कुछ कर नहीं रही थी, बस देख रही थी। उसके हाथ आपस में हल्के से जुड़े थे, चेहरे पर न जिज्ञासा न दखल, बस एक शांत ध्यान। उसने रत्ना देवी की आंखों की वो महीन चिंता देख ली थी, जो बाकी सबकी नज़र से छूट गई थी। धूप अब थोड़ा और आगे सरक आई थी। फर्श पर बनी पट्टी रत्ना देवी के पैरों तक पहुंच गई। उन्होंने हल्का सा पल्लू खींचकर ठीक किया, जैसे खुद को वर्तमान में लौटाने की कोशिश हो। श्यामली एक कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई। उसने कुछ कहा नहीं, बस वहीं खड़ी रही। हवेली के उस विशाल हॉल में अब आवाज़ें कम थीं, पर खामोशी भारी नहीं, सोचती हुई थी। एक आने वाली मेहमान की आहट दीवारों से पहले दिलों में पहुंच चुकी थी। रसोई घर में भी हलचल के बीच एक अलग सी फुसफुसाहट चल रही थी। बर्तन धोने की छनछन और चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई की सौंधी खुशबू के बीच नौकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे कोई अनकही खबर सब तक पहुंच चुकी हो। मधु ने धीमे स्वर में कहा, सुना तुम लोगों ने, मालकिन की बहन आ रही है। रामू ने पलट कर देखा, हाँ अभी हॉल में बात हो रही थी। मधु ने होंठ पींचे, फिर फुसफुसाई, वो बहुत बड़ी मुसीबत है, हर चीज टटोलती है, रसोई से लेकर आंगन तक, जरा सी कमी दिखी तो बस घंटों सुनना पड़ता है। दूसरी नौकरानी ने घबराकर चूल्हे की आंच कम की, फिर तो सब दुरुस्त रखना पड़ेगा। रसोई में अचानक सबके हाथ तेज चलने लगे, जैसे आने वाला हफ्ता पहले ही दरवाजे पर खड़ा हो।